Hello and welcome. This is the seventh episode of the Fourth Seat podcast. Joining me today is Mayuk and Adi, our usual panelists. Hey guys.
Hello.
Hello Rahul, how are you doing?
Good, fantastic.
And I believe this is your birthday weekend, so happy birthday Rahul.
Thank you Mayuk, happy thanks birthday. A lot. Thanks a lot Adi.
Did you buy cake from Monjini's?
No, but we went to this really good bakery. So, by God's grace, if you are living in the western part of the world, baking is not taboo here, unlike India, where you have to buy Monjini's and you are scarred for life. But my wife gifted me this really nice, or bought a really nice birthday cake for me. So, yeah, thanks a lot, guys, for the wishes. And
तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो हजार
as the song goes.
क्या है पब्लिक को ओवरकिल करने सबको.
नहीं, it is good. So we are in a festive occasion, right?
Yeah, you can say that. काफी. And कल if you're listening to our podcast, advanced New Year wishes to you too.
If you are a Tam, you are a Mallu, you are a Bong, sabka New Year agla.
How would you say that in Tamil?
Puttandu Vaazhthukal.
Puttandu Vaazhthukal.
And in Bengali, it would be, so it's basically called Poila Boishak, that is first day of Baisak. So Happy New Year, Bengali people and everyone, Tamil people and Malayalam people as well.
Happy New Year to everyone except for the Telugites, the Kannadigas and the Marathis.
Jitka, Ugadi and Gudi Padwa ho chuka hai. So belated New Year to them.
Belated New Year.
So, aaj ka topic hai baat karne ki.
हाँ, अरे आज का टॉपिक भी एकदम मजा आने वाला है एकदम. तो obviously we have put in a lot of thought into it, but since we were on the topic of April and all of that, I remember April, usually we start priming ourselves as kids for the summer vacation. And summer vacation during our school days used to be the time where we used to travel, quote unquote, which is going to be our topic of discussion today. And those days for us, ट्रैवल के नाम पे आज जैसा अच्छा बैंकॉक जाना है कि प्राग जाना है ऐसा सब नहीं था. इट वाज सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑफ गोइंग टू योर कोट एंड कोट नेटिव प्लेस, व्हाटएवर द हेल दैट वाज सपोज्ड टू मीन.
प्लस इंस्टाग्राम और हैशटैग भी नहीं था तभी, तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता था.
अरे लेकिन
वी मस्ट स्पेंड 2 मिनट्स इन ये नेटिव प्लेस का क्या, किधर से आए हुए ये, मतलब ये कोई ऐसा लगता है जैसा कोई ब्रिटिश अपना बोल रहा है ऐसा कि मैं अपना नेटिव को विजिट करने जा रहा है, मतलब किधर से आया किधर से.
मेरे को आई ऑनेस्टली हैव नो क्लू अबाउट इट. आई थिंक उस टाइम पे ऐसा कुछ होगा कि पब्लिक वी वर नॉट सीन एज वन कंट्री, तो उसके चलते अगर कोई मद्रास प्रेसिडेंसी का आदमी अगर निजाम का स्टेट में कुछ काम कर रहा है तो वो बोलता होगा उस टाइम पे ब्रिटिशर लोग को.
मुंबई में था कि मैं गाँव जा रहा हूँ, तो मैं जब छोटा था मैंने, अरे मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ, मैं सिटी में रहता हूँ, मतलब मेरा नेटिव प्लेस बड़ा सिटी है. देन आई रियलाइज की मतलब पीपल हु आर इन मुंबई फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, दे कॉल देयर नेटिव प्लेस गाँव. So they're like, मैं गाँव जा रहा हूँ, तू गाँव जा रहा है क्या? And that was new to me.
But talking of गाँव, तुम लोग actual गाँव भी गए हैं क्या कभी?
मैं गया हूँ.
Had it? Oh.
मतलब मेरा मतलब मैं नहीं, my native place, all my relatives are basically in proper Calcutta. Outside Calcutta नहीं है, लेकिन I mean visit करने के लिए मैं as a tourist destination थोड़ा बहुत गया हूँ, but not that much. I would say I have actually been to more गाँव in Maharashtra, traveling in Maharashtra as compared to gaon in West Bengal. Utna nahi gaya hu main, ha.
Mera bhi same hai. Chennai mein mera ekdam base camp hamesha Chennai.
Fir uske baad Chennai mein bhi specific neighborhood. So if you are a Tambam, there a neighbor used to be West Mamballam or T Nagar. Usually विथ टाइम वो अण्णा नगर वो सब एरियाज आना चालू हो गया, बट दैट वाज चेन्नई फॉर अस.
मेरा भी ऐसे ही था, दी लेटर ऑन मूव ऑन टू ऐसा अण्णा नगर में बहुत साल रहता था, और वो स्कारिंग था मालूम है कैसा, समर का महीना, इवन बॉम्बे भी गर्म ही रहेगा, लेकिन तेरा पेरेंट्स क्या करता था तेरे को, चल इधर का गर्मी कम है अपन और थोड़ा गर्म जगह जाता है, तो लेके जाता था मद्रास. और ग्लोरी डेज कैसा अपना अभी जैसा ये भी नहीं था, मतलब हमेशा तेरा एसी कंपार्टमेंट का ट्रेन इज नॉट फॉर ग्रांटेड, ठीक है ऐसा, वो वैसे भी कम था.
नहीं, और अभी तो मतलब फुल एसी ट्रेन्स भी आता है, मतलब तुम्हें टिकट मिलेगा, मतलब ठंडा हवा के अंदर मिलेगा.
अरे But, तभी मिलता भी नहीं था ना टिकट.
हाँ, और एसी का कंपार्टमेंट्स कम होता था, एंड देन अगेन आई मीन बिफोर बिफोर वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय 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 एयर दैट मच, हम लोग ट्रेन का ही लेते थे. एंड उसके पहले नहीं, एसी के पहले आई थिंक इट वाज स्लीपर स्लीपर कंपार्टमेंट.
हाँ, एंड टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, अभी का जो फ्लाइट है उसका इक्विवेलेंट वाज एसी ट्रेन का, और अभी का एसी ट्रेन वाज उसका इक्विवेलेंट स्लीपर था तभी.
और स्लीपर में मतलब इंस्टाग्राम कर भी नहीं सकते अगर जा रहे हैं तो. बहुत बहुत लॉजिस्टिकल इश्यूज,
बट देन हाँ मैं करेगा.
Exactly. Or and I'm talking about a time when the express trains were colored red. Blue नहीं होता था.
Exactly. वो मेरे को बहुत ऐसा vivid memories है इसका.
वो अच्छा था ना, मतलब अगर खिड़की से तुम लोग पान थूकेगा तो समझेगा नहीं कि actually कोई थूका
गया. I think उसी के लिए वो लोग ने red बनाया.
Red color. Exactly. I also because Indian Railways for all the slack that it gets, they are quite an intelligent bunch. So I think वो लोग ने उसी के लिए बनाया था.
टॉयलेट का मग में चेन लगाने का, मतलब ये सब क्विंटेसेंशियली इंडियन रेलवे से.
But then तो तुम लोगों को so I mean I'm being a little bit presumptuous, I'm assuming that तुम लोग जब छोटा था तो तुमको बहुत मजा आता था चेन्नई जाने में. मुझे बहुत मजा आता था कजिन से मिलने इनिशियली, बट डिड दैट इंटरेस्ट वेन ओवर टाइम?
नहीं मतलब, सो आई विल जस्ट टेक यू थ्रू क्विक जर्नी. उस टाइम पे काफी सिंपल था, आई थिंक फैमिली एज अ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली वाज क्वाइट डिफरेंट बैक देन, तभी काफी क्लोज नेट थे. सो उस टाइम पे वेकेशन स्लैश ट्रैवल मेंट दैट यू आर गोइंग टू विजिट योर नेटिव प्लेस, ए के चेन्नई फॉर अस एंड कलकत्ता फॉर यू. तो वी यूज टू लैंड अप एट सम रिलेटिव्स प्लेस, वहां पे ऐसा इन वन टू बी एच के देर यूज टू बी एन एन एक्स अननोन नंबर ऑफ पीपल लिविंग पैरेलली. एंड फॉर अस एज किड्स इट वॉज मोस्टली अबाउट स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम विथ आवर कजिन्स. वो एक बहुत ही एंजॉयबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एंड विजिटिंग अ लॉट ऑफ रिलेटिव. सो उस टाइम पे आई न्यू हु वॉज वॉट रिलेटिव, वो एक कनेक्शन पॉइंट बैठा हुआ करता था. एंड देन उसमें एक और एस्पेक्ट ये भी हुआ करता था कि अगर किसका शादी वादी है, इट वॉज इवन मोर फन बिकॉज दैट वॉज वन, इट वॉज वेरी कन्वीनियंट. एक जगह पे पूरा तुम्हारा पलटन जमा होता था बिकॉज आर ग्रैंड फादर थैंक टू देर very high fertility rates and too much time on their hands. By default,
lack of Star TV, lack of India TV.
हाँ, पांच छः सात आठ सब पैदा करके इतना बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली होता था कि you didn't even, आज का तारीख में पब्लिक वुड बी bewildered कि अरे ऐसा कैसा हो गया करके. तो वो एक जर्नी था. एंड विच टाइम क्या हो गया कि एक तो किसी के घर पे जाके रहना भी रियलाइज्ड कितना कंबरसम हो सकता है, एस्पेशली इफ द टेबल्स वर टर्न्ड, सो टू स्पीक. अगर तेरा मुंबई में वर्किंग डे के दिन कोई आ गया तो तेरा स्केड्यूल का बैंड बज जाता था, एंड इट यूज्ड टू बी हेवीली इनकन्वीनियंट. एंड ऑब्वियसली वो रिलेशनशिप भी कैसा होता था आई डोंट नो, बिकॉज हम लोग के केस में, मेरे केस में एटलीस्ट वो फेमिलियरिटी कम होते गए बिकॉज यू विजिट देम वंस अ ईयर, देन इट बिकेम वंस इन टू ईयर्स डिपेंडिंग ऑन तेरे पापा का एल टी ए. तुम लोग का पेरेंट्स को भी, फादर्स को भी
बिकॉज
एल टी ए मिलता था, तो डिपेंडिंग ऑन एल टी ए एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ बोर्ड यू आर. अभी एक हर साल तो चेन्नई नहीं होता था, आई थिंक देर वर सम इयर्स वेर यू वुड विजिट अदर डेस्टिनेशंस विच आर मोर क्लीशेड. सो आई थिंक द इंटरेस्ट थिंग काइंड ऑफ वेंट इज हाउ आई वुड पुट इट मयूक टू रेस्पॉन्ड टू यू.
बट मेरे लिए ये स्ट्राइकिंग है, मतलब व्हाट स्ट्राइक्स मी इज कि द प्लेसेस वेयर वी यूज्ड टू स्टे ना फैमिली का, वो लोग एक्सटेंडेड फैमिली भी टर्म करना इज अ फार स्ट्रेच इन सम सेंस बहुत सारा केसेस में. जैसे वो लोग मेरा डैड का कजिन्स था और दे हैड ग्रोन अप ऑल देयर लाइफ इन मद्रास और माय फादर हैड ग्रोन अप ऑल देयर लाइफ ऑल हिज लाइफ इन बॉम्बे. तो इवन उनके बीच का कनेक्ट भी ये साल का एक विजिट दो विजिट तीन विजिट उससे ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ऐसा शेयर्ड हिस्ट्री सब नहीं है. लेकिन बहुत कैजुअली जाके रहता था वेगर पे. मतलब आज के तारीख में इफ यू थिंक तेरा खुद का डायरेक्ट कजिन भी आके रहेगा तो उसमें भी लोग ऐसा बहुत सवाल करता है कि ऐसा कंफर्टेबल रहेगा कि नहीं, कन्वीनियंस का क्या है, बट इतना सोचता नहीं था लोग
उस टाइम पे. बट देन तुम लोग कोई एलटीए के चलते डिड यू विजिट एनी अदर टूरिस्ट स्पॉट्स? मयूक मे बी यू कैन गो फर्स्ट हियर. तो और कौन सा तेरे लिए वेकेशन स्पॉट्स हुआ करता था?
तो बेसिकली आई थिंक इट इज कंसिस्टेंट अक्रॉस पब्लिक सेक्टर इन इंडिया. जो एलटीए होता था, वन वुड बी फॉर होम टाउन विजिट एंड वन वुड बी फॉर ट्रैवल, राइट. लेकिन लोग क्या करते थे कि आई मीन इट डिडंट मैटर, यू कैन टेल हाँ मेरा हिमाचल प्रदेश मेरा नेटिव प्लेस है, बट देन समडे यू कैन से अरे नहीं कैलकाटा में मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ. सो आई मीन दैट वाज जस्ट नो समथिंग पेन एंड पेपर वर्क, एक्चुअली डिडंट मैटर. तो yes, mostly when my dad had has many siblings, so hum log kafi visit karte the, and it was more than, it was not extended family, it was more than it was more close knit at that time. So I was excited to meet my cousins, and jo mere uncle aunts hote the, that they were my mom ya dad ke siblings. So it used to be fun. As far as visiting other destinations go, I mean, that is one caveat that is unfortunately growing up bahut zyada nahi hua. I think I remember when I was in 7th, 8th and 9th, toh thoda idhar udhar zyada jana shuru hua. But other than that, before middle school, like 1992 se 1997, 8, hum log bahut zyada destinations India mein as such kuch visit kiya nahi. तो वी डिड दैट आफ्टरवर्ड. सो बचपन का जो मेमोरीज था, ट्रेन ट्रैवल टू कैलकटा, एंड इफ आई मे ऐड, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द 32 आवर ट्रेन जर्नी इटसेल्फ मोर देन गेटिंग इनटू द हीट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ कैलकटा. ऑफ कोर्स आई हैड फन देयर, बट आई वाज रियली रियली पम्प्ड फॉर दैट ट्रेन जर्नी.
मेरा भी सेम, मतलब ट्रेन जर्नी आज के तारीख में वी कांट थिंक ऑफ इट दैट फॉन्डली, लेकिन तभी बहुत मजा आता था. और स्पेशली अगर एक हाथ बार अगर एसी मिल गया ना, तो दोस जर्नीज यू वुड लुक फॉरवर्ड टू बहुत ज्यादा. जैसा उसमें
वो आई थिंक वो मेरा मेमोरी रहेगा, वो तो पब्लिक फोटो वोटो सब लिया रहेगा,
जैसा वो ब्लैंकेट मिलता था,
ब्लैंकेट टॉवल, बट उसके अराउंड रिचुअल्स काफी सारा होता था. तुम लोग को वो याद है क्या?
बहुत अच्छे से. मतलब एक तो पहला, सबसे पहला तेरा वो चेन रहता था ना, एक सूटकेस बांध के रखने के लिए, मतलब वो चेन तेरा सूटकेस जितना हेवी रहता था. अच्छा,
वो जू में वही चेन से हाथी को बांधता था, मतलब
वो टॉर्चर चेम्बर का ऐसा कोई ऐसा चाबी है, चेन है वैसा टाइप का था वो.
फिर
उसके बाद वो सब तैयार करके लाइक, और दी लैक ऑफ क्वालिटी इन इंडियन ऐसा पैंट्री फूड ना, उसके अराउंड बहुत रिचुअल्स था. जैसा मेरा घर में ऐसा एक दिन पहले से सबसे तीखा खाना जो बना सकता है ना, वो बनाएगा ट्रेन के लिए. और उसका लॉजिक
से ऑयली
उसका लॉजिक ये था कि वो दो दिन तक तेरा ट्रेन, एंड देयर इज हाई लाइक्लीहुड दैट योर ट्रेन वुड बी डिलेड बाय से 15 आवर्स और सो, तो उसके लिए भी ऐसा कवर करने के लिए तेरा सब्जी और अचार ट्रेन के लिए, आलू एकदम जितना तल सकता है उसको तल के एकदम मिर्ची डाल के, either with there is a madrasi version called vettakulambu which is concentrated tamarind, usme tomato ya tera pumpkin ye sab dal ke, wo uska bhi ekdam concentrated version with rice mein mix karke na, wo train mein ferment hote jayega over a period of time and progressively it is supposed to get tastier. To ye sab train ka dabba, and so much more cumbersome re, matlab aisa ek pura bag aisa pantry leke chal raha hai, aisa 5 log rahega to unka pura khana tere sath hai.
Can you imagine ek bag sirf dabba aur khana tha hum log ke case mein.
To हम लोग का ना ये ट्रेन टू ट्रेन डिफर होता था, इन द सेंस हम लोग को अभी ऑब्वियसली अप्रैल है तो टिकट बुक हो गया है मई महीने के लिए, जून महीने के लिए, व्हाटएवर, मई महीने के लिए बेसिकली.
बाय द वे जस्ट अ क्विक इंटरजेक्शन, वो टिकट कैसे बुक हुआ और कौन किसको पैसा दिया और कैसे बाहर आया इज रिमेन्स अ मिस्ट्री टू डेट. आईआरसीटीसी
लगाना पड़ता था.
This was before IRCTC, na? This was before IRCTC. Basically, दो ऑप्शन, इधर ट्रैवल एजेंट के पास जाओ या फिर घर पे सुबह सुबह जाके लाइन लगाओ स्टेशन के बाहर.
और वो भी सब स्टेशन नहीं मयूक, वो टाइम में बॉम्बे में सेलेक्ट स्टेशन पे ही तो वीटी जाएगा, दादर जाएगा तो ही तू कर सकता है.
एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो तभी क्या था, देर इज टू बी लाइक, अभी तो बहुत सारे ट्रेन्स है. दैट टाइम देर वेर मेनली थ्री ट्रेन्स, आउट ऑफ विच टू यूज टू गो वाया नागपुर टू कैलकाटा फ्रॉम मुंबई. एक था वाया इलाहाबाद एंड माय पेरेंट्स यूज टू नेग्लेक्ट दैट, उसमें नहीं जाने का है, अच्छा ट्रेन नहीं है करके, विल गो वाया नागपुर. तो वाया नागपुर से दो ट्रेन था, एक मुंबई मेल एक गीतांजलि एक्सप्रेस. सपोजेडली गीतांजलि एक्सप्रेस वाज अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव वर्जन, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा खाना मिलता था. ठीक है, तो
प्रेस्टीज वेस्टीज भी हुआ करता था कि अरे गीतांजलि से है, अरे वाह 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 ऐसा बेटा.
एग्जैक्टली.
और गीतांजलि एक्सप्रेस यूज्ड टू डेरिव द सेम वाओ फैक्टर बेसिकली.
हाँ हाँ हाँ. तो खाना पैक होता था एक दिन के लिए, आई थिंक लास्ट नाइट या लास्ट मील के लिए वो ट्रेन से लेना पड़ता था. तो आई मीन दैट वाज व्हाट माय फैमिली डिड एट दैट टाइम, नो पर्टिकुलर रीजन एज सच. बट वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टक विथ मी सिंस चाइल्डहुड एंड आई इवन डू इट नाउ, कि आई फाउंड माय लव फॉर ब्रेड ऑमलेट इन द ट्रेन. वो बहुत ही घटिया ब्रेड और घटिया ऑमलेट होता था, लेकिन
सूखा हुआ ब्रेड ना.
या तो फॉर फन सम रीजन आई थिंक मैं कुछ तो फालतूगिरी कर रहा था, थर्ड फोर्थ में था, एंड माय डैड इज लाइक अरे ये ब्रेड ऑमलेट ईट दिस ब्रेकफास्ट करके. तो आई फेल इन लव विद दैट स्टेल जंक एंड मैं हर टाइम ट्रेन में उसके बाद से ब्रेड ऑमलेट लेने को चालू कर दिया, एंड घर पे भी ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट. तो
उसका वेज वर्जन भी है, ब्रेड कटलेट.
सुबह आएगा ब्रेकफास्ट बेचने और ये लोग खरीदेंगे, एंड मैं इनवेरिबली मिडल बर्थ या अपर बर्थ पे सोता था, फिर नीचे उतरूंगा टूथब्रश और पेस्ट ऐसा वॉबली ट्रेन में लगा के, वहां पे एक छोटा सा एक तेरा थाली से थोड़ा बड़ा मेटल का एक वॉश बेसिन रहेगा, उसमें कुछ तो ब्रश करके यूज्ड टू कम बैक टू अ कप ऑफ टी एंड योर ब्रेड कटलेट, एंड दैट यूज्ड टू बी लाइक अ रिचुअल. आई थिंक ये लगभग सभी का मेमोरी है ये, आई थिंक.
और ये गोरी विजुअल्स का थोड़ा लिसनर्स को वार्निंग भी देने का, मतलब इट माइट मेक यू अनकंफर्टेबल इफ यू आर ईटिंग फूड. वो प्रोग्रेसिवली तू ट्रेन का कौन सा, मतलब विच आवर ऑफ द जर्नी यू आर इन, वो वॉश बेसिन में माणिकचंद रहेगा.
एंड लेट मी जस्ट ऐड दिस, दिस वाज अ मेजर फैक्टर विच फॉर विच माय पेरेंट्स अवॉइडेड द वाया इलाहाबाद रूट. आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल ओवर हियर, बट मेरा पेरेंट्स ने ऐसा बोला था.
But there apologies to those from Madhav.
There are some other rituals since you are talking about all this, and food, although it was an important part, I think we were still taken care of because काफी junk. I think that was the only time जब parents encourage करते थे कि बेटा junk खाओ, because the other food options were practically non-edible. तो ऐसे चिप्स, अंकल चिप्स का पैकेट, फिर बाद में चीकी का पैकेट, वो सब तभी विथ नो लिमिट्स खा सकते थे हम लोग.
और राहुल कोई नहीं, और सब ट्रेन में पैंट्री होता भी नहीं था. डू यू रिमेम्बर कि ऐसा देयर यूज्ड टू बी डिस्कशन अराउंड ये गाड़ी में पैंट्री है कि नहीं है. मतलब ऐसा चेन्नई मेल द वर्स्ट ऑफ द लॉट, ठीक है, वो रात को निकलेगा बॉम्बे से और ऐसा ungodly hours में सब कभी तो जाके पहुंचेगा सर सुबह 4 बजे.
If your mom was really upset with dad during the vacation, it was mainly because of this. Because pantry नहीं था करके उसको एक और बैग में खाना बना के इतना मेहनत करके लेके
और बहुत हैवी था वे, मतलब it was inconvenient for everyone concerned. और एक तो टैमब्रैम लोग का खाना is anyway messy, ठीक है, तू curd rice खा रहा है, गिराया नीचे, फिर सांबर डाल रहा है उधर से, और आजू बाजू में कोई नहीं खाने वाला रहेगा ना. नाउ आई कैन इमेजिन कि अपन दूसरे का कन्वीनियंस के बारे में कितना कम सोचता था वे. एक पेपर ऐसा पूरा बिछा के बैठाने का, और वो पेपर प्लेट लेके आता था मैं, एल्युमिनियम फॉइल टाइप का वो शाइनी पेपर प्लेट
उसके साथ वो एक प्लास्टिक स्पून, कंप्लीटली वर्थलेस.
लेकिन
एंड इट वुड स्मेल,
तुम लोग को याद है क्या, लेकिन आफ्टर ये हम लोग जब फिर एसी का टिकट निकालने को चालू किया, उसमें एक फोल्डेबल टेबल आता था, तो इफ यू हैव अ विंडो सीट तो
तेरे लिए ही है वो प्रिविलेज।
हाँ, लेकिन बाकी लोग अपना वाटर बॉटल, चश्मा, कचरा सब उधर डालेगा, एंड देन बहुत जगह भर जाता था वो।
बट तुम्हारा मतलब टू टायर एक्सपीरियंस कब से आने लगा? मतलब मेरा मोस्टली एसी भी ट्रैवल ना एसी थ्री टायर में था स्टार्ट में, जितना भी किया तो उसमें भी वो मिडिल बर्थ इश्यूज था, बट बाय दैट टाइम आई हैड फिगर्ड आउट कि मेरे को ये अपर बर्थ कन्वीनियंट है, क्योंकि अपने को कुछ काम धंधा है नहीं खाने के अलावा नीचे, ठीक है। और अनलेस स्लीपर क्लास में ऊपर मिल गया तो तू मर गया, मतलब तू वो गुंटक्कल, कड़प्पा ऐसे सब बेल्ट आंध्रा से जा रहा है, उधर तू ऑमलेट बना सकता है,
सन की हीट के नीचे सो
वो पंखा ना हेयर ड्रायर था बेसिकली ऊपर का,
वो पंखा बेसिकली प्लेसिबो था कि हाँ चल रहा है वो, लेकिन एक्चुअली कुछ हवा नहीं आता था।
वो कंगी और पंखा का कॉम्बिनेशन ना उधर से पब्लिक सीखा, और वो लोग फिर लोकल ट्रेन में भी यूज करता था वो बचपन में वो लोग देखा कि उनका पिताजी लोग भी वही कर रहा है, कंघी से पंखा घुमा रहा है, तो ट्रेन में बंद हो गया तो सबका इमीडिएट सॉल्यूशन, ऐसा ये सब नहीं सोचता था कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यू रहेगा, लाइन कटा रहेगा, नहीं कंघी घुमाएगा तो घूमना ही मांगता है।
अरे देवर एंड देन मोस्टली देवर राइट ना, वो कुछ तो चालू हो जाता था वो
अरे उसमें बाल माणिकचंद का पैकेट से भटकता रहता था, तो उसकी वजह से नहीं घूमता था वो।
बट रोबस्ट ऐसा ये सब कोल्ड वॉर के टाइम पे रशिया से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट बना के
अरे
वो वर्कोयंस और गुंटूर दोनों जगह गुंटक्कल ये दोनों पे सेम वेदर कंडीशन था बेसिकली, बट
अपोजिट
एंड्स ऑफ द टेम्परेचर स्केल बस।
और वो तू गर्मी में जाता था ना वो जगह में, तू ऑमलेट लिटरली तो खिड़की पे फ्राई करेगा तो ऑमलेट बन जाएगा, उतना गर्मी था।
हाँ, पब्लिक टॉवल वावल सब सुखाने के लिए रख देता,
और वो 3 मिनट से ज्यादा वो टॉवल गीला रहता नहीं था, जिस ड्राई हीट ऑफ द वर्स्ट काइंड।
अरे ये
बट मेरे पर अदर रिचुअल्स अराउंड इट, मेरे को एक और याद है कि तुम लोग उस टाइम पे आई थिंक ये अंकल पई का, अनंत पई का टिंकल कॉमिक बुक्स पढ़े क्या तुम लोग ने? वो अमर चित्र का
वो ट्रे में लेके आता था, मन में क्या, वो एक बास्केट लेके, वो न्यूज़पेपर वाला भी
ट्रे में भी लेकर आता था, और अपन भी बिफोर द जर्नी बिगन वी यूज्ड टू बाय
स्टॉल में, रेलवे स्टॉल में
सब मिलता था बिफोर, उसमें ऐसा वो स्लीजी नॉवेल्स ये
चिकनी का
इक्विवेलेंट सब तक को मिलता था, एंड आई वाज वंडरिंग कि हु रीड्स ऑल दिस क्रैप।
वो अभी भी वही बेच रहे हैं, अभी भी तू जाएगा बॉम्बे का रेलवे स्टेशन में शायद तेरे को 99-2000 का एडिशन मिल जाएगा उधर।
वहाँ पे वो भी होता था ना ये स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन,
स्पोर्ट्स स्टार वाज क्वाइट गुड रे, लेकिन मिलता नहीं था इतना। स्पोर्ट्स स्टार आई थिंक आउटलुक या इंडिया टुडे वाला कोई चलाता था, हिंदू वाला।
हाँ, तो उसका बीच का पेज में एक बड़ा पोस्टर आता था,
पोस्टर से याद आया, वो एक बार जैक, एक ही स्पोर्ट्स स्टार बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खरीदता था, ऐसे ही ट्रेन में एक बार खरीदा, उसमें जैक रसल का पोस्टर था, वो इंग्लैंड का विकेट कीपर था, फालतू थर्ड रेट क्रिकेटर, घर पे लगाया था उनमें दीवार में, क्योंकि मेरे पास वही पोस्टर था और वो फ्री में मिला था ना।
हाँ हाँ हाँ
हाँ। और वो एक बार वैक्यूम क्लीनर कर रहा था तो जैक रसल वैक्यूम क्लीनर खा लिया उसको।
तुम लोग को वेटिंग रूम का कॉन्सेप्ट, उसका नाम क्या है, क्लोक रूम के बाहर, एक तो क्लोक रूम में, उसमें भी एक वो कास्ट सिस्टम इंडिया में, वी टुक इट टू अनदर लेवल। सो एसी इसका जनरल कंपार्टमेंट का और स्लीपर का क्लोक रूम वाज लाइक वो, और तेरा आज का तारीख में तो गैराज जो है वो, इट यूज्ड टू बी द सेम डिस्क्रिप्शन। देन एसी के लिए थोड़ा वहां पे साफ हुआ करता था।
तुम लोगों ने कभी ये कोई बड़े स्टेशन का वेटिंग रूम में रुका है क्या तुम लोग?
हाँ, वही जो राहुल बोल रहे, वही मेरा एक्सपीरियंस।
नो, आई मीन लाइक ओवरनाइट स्टे, मतलब ऐसा
नहीं, चार पांच घंटा वगैरह रुका है, क्योंकि और कोई जगह जाने के लिए नहीं था और होटल में पैसा देने का नहीं था, तो वैसा जगह में रुका है क्लोक रूम में। बट एज राहुल सेड, क्योंकि अपना क्लोक रूम्स यूजुअली ऐसा ओवरफिल्ड रहता है बिकॉज ऑफ आवर टेंडेंसी ऑफ आवर ट्रेन्स टू बी वेरी लेट, तो पब्लिक उधर ऐसा घर जैसा ट्रीट करता है, ऐसा लॉर्ड जे वो लोग के लिए।
अरे आई हैड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, एक अनयूजुअल। हाँ ठीक है, तो दिस इज नॉट टोटली बचपन, मतलब मैं तभी सेकंड ईयर था इंजीनियरिंग का, एंड आई एंड माय कजिन हु वाज इन बॉम्बे एट दैट टाइम, वी प्लान्ड अ ट्रिप टू वाइजैक। तो हम लोग वाइजाक गया और वाइजाक से वापस आने का टिकट बहुत खराब था. वी हैड एन ओवरनाइट स्टे इन नागपुर स्टेशन. तो हम लोग ना नागपुर स्टेशन का वेटिंग रूम में रुका, मतलब लाइक वेर यू हैड द शावर बेड एंड टेबल एवरीथिंग. इट वॉज बेसिकली अ होटल रूम. अबे मतलब दैट रूम वॉज अमेजिंग, इतना सही था वो. हाई सीलिंग्स, बिग बेड, बड़ा बाथरूम. आई मीन तो दैट वॉज द ओनली टाइम व्हेन आई हैव एक्चुअली स्टेड ओवरनाइट इन अ होटल, इन होटल लाइक क्लोक रूम दैट यू आर डिस्क्राइबिंग. तो मैंने सी एस टी दादर का देखा नहीं है, बट माई ओनली एक्सपीरियंस ऑफ दैट कम्स फ्रॉम नागपुर स्टेशन. बहुत सही था वो.
बट द ओनली डिफरेंस इज मयूख, सी एस टी और दादर में पूरा रेलवे स्टेशन क्लोक रूम है.
Exactly. That could be a reason. Yeah.
So on this note, I would like to take a break and move on to our next segment. This fake break has been sponsored to you by AH Wheeler. FYI, AH Wheeler was the company which used to run the bookstalls in majority of the train station. So if you are more interested, please read more into it, and we'll catch up with you right after this break.
Welcome back to the next segment. So we stopped at AH Wheeler and Co. So there are a lot of these railway bookstalls which have played a huge part in our train travels, right guys? So you had these Higgins Bothams is the other company I can think of. और ये चाचा चौधरी, टिंकल, अमर चित्र कथा, ये सब बहुत पढ़ता था क्या तुम लोग?
Major. वो that was something that I think वो train, वो पूरा vacation में train travel का part was वो if it made memorable and bearable, I think those Anant Pai, the late Anant Pai I must say, had a very big role to play in this, and I think कहीं ना कहीं कुछ cultural learnings भी मुझे उसके वजह से मिला, because otherwise ये तेरा mythology का और Hinduism का काफी सारा connect, he was the one who kept it alive for me. So for me,
अगर actually मुझे लगता है, या if not for अमर चित्र कथा, आगे जाके राजगोपालचारी का महाभारत वगैरह भी मैं नहीं पढ़ता था usually. I think that kept the interest alive. और उसमें तुमको मालूम है क्या, एक vacation specific ना ये train travel के around ही आता था, टिंकल डाइजेस्ट बोल के, पच्चीस रुपए का नॉर्मल टिंकल, वो पेपर का एकदम फालतू क्वालिटी का रहता था, और टिंकल डाइजेस्ट दस रुपए का टिंकल डाइजेस्ट मोटा था. तो इट वॉज एम्ड एट एन ऑडियंस जिसका अटेंशन स्पैन थोड़ा ज्यादा है और ऐसा फालतू टाइम थोड़ा ज्यादा है वैसा वाला.
मैं वहां से, आई मीन अपार्ट फ्रॉम द बुक्स दैट यू मेंशनड, कॉमिक्स दैट यू मेंशनड, मैंने वहां से एनिट ब्लिटन का सब बुक्स खरीदा है. That I used to finish for over the period of the train journey. Or other than that, मुझे याद है, it used to be very funny at that time, Supandi. तो Supandi का comics खरीदता था मैं.
Supandi का spin-off सब भी आया मालूम है के बाद में. मतलब ये Tinkle का हर एक character का ऐसा spin-off आता था अलग से उनका, जैसा चाचा चौधरी का एक एक कैरेक्टर बिल्लू करके एक बच्चा रहता था. तो
बिल्लू, पिंकी, वो सब क्रैप मैंने पढ़ा नहीं है. एक और चीज था विच मैंने इंटेंशनली स्किप करता था, आई रिमेम्बर, वाज टिंकल का सीरीज में शंभू शिकारी मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है. फॉर सम
वो नॉनसेंस था बे. तंत्री द मंत्री पढ़ता था क्या तुम लोग?
तंत्री द मंत्री
अकबर भी तो था. या आई रिमेम्बर दैट.
बट वो रेलवे स्टॉल्स में ना अभी भी एक बुक तेरे को मिलेगा जो वो जमाने में मिलता था, ऐसा चाणक्य का फोटो डाल के, वो सेल्फ हेल्प मोटिवेशन वैसा वाला सेक्शन जो है ना बुक स्टोर का, सबसे चीपेस्ट, सबसे शेडी सेल्फ हेल्प बुक्स तेरे को वहां मिलेगा, और वो पिछला 30 साल से शायद वही है उधर.
एंड उसमें शिव खेरा का बुक इंक्लूडेड है.
Included है. और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर उसमें चेतन भगत आ गया.
अरे अभी चेतन भगत बहुत मिलता है वहाँ पे. एंड आई एक्चुअली मेड अ मिस्टेक, जब मैं, वी आर गोइंग टू आई थिंक मूव टू द पार्ट वेयर वी आर ट्रैवलिंग अलोन. तो मैं जब पहली बार ट्रेन में अकेला ट्रैवल कर रहा था, पहली बार की दूसरी बार, मैंने एक्चुअली स्टॉल से चेतन भगत का बुक ले लिया था. आई वॉज हाईली मिस इन्फॉर्म्ड एट दैट टाइम. And
not five points.
So मैंने देख लिया था पहले, मुझे लगा कि ठीक है चलो टाइम पास होगा, but I think I bought either three mistakes of my life or half girlfriend.
Big mistake.
बहुत 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 बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया.
Half girlfriend तक तू अगर वो गलती किया, मतलब मयूको, you are to blame.
नहीं हाफ गर्लफ्रेंड आई थिंक अपन यूएस आ गया था तो इट मस्ट बी थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ बिकॉज़ हम लोग दैट टाइम वी वर स्टिल इन इंजीनियरिंग ना
जब तो अपन गलीबल था
या तो मैंने थ्री मिस्टेक्स खरीदा था या सो नॉट हाफ गर्लफ्रेंड ईदर थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ और वन नाइट इन अ कॉल सेंटर
और वो लोग क्या कॉन्फिडेंटली ऐसा गंदा क्वालिटी का प्रिंट और वो सब पायरेटेड ऐसा ओपनली बेचता था ट्रेन के अंदर आके ठीक है वो न्यूज़पेपर वाला वो ऐसा देयर आर सम न्यूज़पेपर्स जो सिर्फ मैं ट्रेन में ही देखा है डेक्कन क्रॉनिकल वगैरह में कभी रस्ते पे ज्यादा देखा नहीं है वो हमेशा ट्रेन में वो एक छोटा सा बेल्ट में आके और ये सब बहुत पतला न्यूज़पेपर रहता था आई यूज टू वंडर कि अरे अचानक से इधर ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया बदल क्यों गया
या फ्री प्रेस जर्नल
और
सबसे खराब पेपर क्वालिटी एशियन एज
आई वाज गोइंग टू गेट देयर एग्जैक्टली
एशियन एज यू कैन गेज द क्वालिटी ऑफ पेपर बाय द फूड आइटम्स दैट आर सोल्ड इन इट तो अगर तूने समोसा एशियन एज में नहीं देखा है बिकॉज दे यूज टू मेक इट विद सम वेरी चीप क्वालिटी पेपर ऐसा
वो डिसइंटीग्रेट होके तेरा समोसे के अंदर आ जाएगा वो
अंदर आ
डिसॉल्व वगैरह होके
Yeah. But I mean, I just would like to come back to our topic a bit because that is what our second segment is going to be all about. So, as you might have followed the discussion, it started off with mainly trips to cousins or families, which were mostly obligatory and, you know, have that connection with your native place, so to speak. Leisure ka bahut kam role tha. And I think with time, we grew up and then the nature of our trips changed. But before we get to that, what did you think were the main reasons for those trips not happening anymore? Or aaj ka context mein agar tu dekhe, kya lagta, what has changed according to you? If we can kind of introspect on that.
I mean, right now, I think one of the things that has changed is us growing up, we are, like you said, not that connected to our native land or let's say our extended family. So, isse kya hota hai ki we would rather plan a trip with our friends. Ki अरे अभी चलो मॉम डैड कैलकटा जाके आए हैं अभी मुझे नहीं जाना है ओ आई थिंक मेरा कजिन भी एक बार मुझसे मिल लिया यहाँ पे मुंबई में आके या किधर भी सो लेट्स प्लान अ ट्रिप विथ फ्रेंड्स तो हम लोग गोवा जाएंगे या वेस्टर्न घाट्स में हाइक करने जाएंगे तो आई थिंक लैक ऑफ कनेक्ट और दूसरा है कि अरे बहुत बार गए अभी मतलब अभी कैलकटा में छुट्टी है कैलकटा जाके क्या करूंगा लेट्स ट्रैवल समवेयर एल्स वैसा एंड इट आल्सो कोइंसाइडेड विद मी ट्रैवलिंग अलोन नॉट बाय अलोन आई मीन विदाउट माय पेरेंट्स मोर ऑफन तो फिर कैलकटा जाने का कुछ पॉइंट नहीं है ऐसे किधर घूमने जाते हैं एंड आई थिंक इन आवर जनरेशन has taken that step and now when we are in our 30s let's say people who are in their mid 30s or early 40s they are taking their kids to other places rather than going back to their I would say like their native place would be Mumbai Delhi or Bangalore to wahan nahi jaake hum log vacation mein jayenge I think that's the mindset
but to disconnect with your extended family has also largely matlab wo bhi ek reason hai क्योंकि क्या होता था कि एज वी ग्रो अप और वहाँ अपना कजिन्स दूसरे एक सिटी में दे आर ऑल्सो ग्रोइंग अप तो अपना वो कल्चरल कनेक्ट बहुत कम हो गया
एंड
रिलेटेबिलिटी इन दीज टू डिफरेंट सिटीज वो भी बहुत डिफरेंट हो गया ना
Yeah, and then the cousins had their own set of friends. I mean, unka I think college aur kidhar hoga. They are working somewhere else.
तुम लोग कभी ऐसा फील किया है क्या कि ऐसा बचपन में these were cousins which you felt were very close to you suddenly ek do vacation baad gaya to tere ko laga are apne paas wo connect nahi hai pehla jaisa
nahi hai but I think that has a lot to do with the fact that as you grow older your ability to determine things for yourself became more stronger
and that is a phase of life jab tera circle bhi bahut badhta hai na re
badhta hai change hota hai and then you suddenly become someone who will pick and choose So I think uska consequence mein ye ho gaya tha. And that brings me to the point that I was wanting to talk about is how did travel change for you? Because for me, if I was to recount my experiences, once I hit, I went past because there were for a brief period of time, we didn't really travel a lot and travel ka utna significance, we didn't really see it as a mode of taking breaks, I should say. Why? I don't know. I never really gave it too much thought. That's probably because our parents were busy, or we did have our trips, but we went to these cliched vacation spots of Rajasthan, Kerala, Agra, New Delhi, and all those places. But then what changed at that point in time, especially once we got into graduation or engineering, is we started doing overnight trips with our friends, and budget was a constraint. So, we log aas pass aisa Lonavala, trekking, Goa bhi aisa होता था. तो डिड यू गो थ्रू दैट फेज एज वेल?
या ये तो आई थिंक वी वर लकी दैट वी वर इन मुंबई बिकॉज वी वर वेरी क्लोज टू वेस्टर्न घाट्स राइट. तो वेस्टर्न घाट्स का हाइकिंग ट्रिप्स वर ऑसम. आई मीन अभी भी इवन नाउ बिकॉज एक तो यू हैव अ हाइकिंग ट्रेल, यू हैव अ बेस विलेज, ऊपर जाके शिवाजी का फोर्ट एंड अ वेरी रगेड टेरेन राइट. तो एंड विथ फ्रेंड्स इट वाज सो मच फन. I looked forward to those things. And I remember a couple of trips we took to some secluded beaches in Maharashtra itself, like not as far as Goa, but places like Kashid and nearby places. Now, maine recently suna ki Kashid has gone like bahut zyada popular ho gaya hai abhi. It is not as pristine. But when we look back at the photograph from 2010, early 2010 or late 2009, amazing place, right? Pura white sand, blue water,
silver sand, no, literally silver sand. Mm-hmm. No.
Yeah. So those kind of trips
and
were
something which was so close to Mumbai. The air quality was noticeably different. I remember because fortunately for I would say Mayor Mayuk ka friend circle kafi common tha, and obviously we, the two of us were very close as well. So, by virtue of us being close and our friend circle being the same, hum log kafi trips mein jata tha, and those treks and all, there was some sort of an adrenaline rush that we used to get out of it. Plus, night time pe tu dekhe, stars mein sky wise, apna sky mein stars wars dikhta tha. And as you said, Shivaji ka fort. And then there was some freedom that we experienced at that time, and something changed after that. I think uske baad wo native place ka visit hum log ne altogether more or less abandon kar diya tha, or at least the family component got eliminated altogether.
Priorities yeah. change hua na re. Priorities were more around getting experiences aisa personally.
Aur ye vacation ka timeline change ho gaya na. Engineering mein it's like 3 mahine ka chutti aisi saal mein do bar mil jata tha.
To aur aadha se jyada saal chutti tha basically. Chutti ke beech mein college jata tha.
हाँ अरे
आई थिंक काफी पैसा भी थोड़ा आई थिंक दैट वाज़ द टाइम व्हेन द होल कंट्री स्टार्टेड बूमिंग अप द इकोनॉमिक लैडर. तो आई थिंक इवन द स्कोप ऑफ ट्रिप्स चेंज्ड व्हाट स्टार्टेड ऑफ एज ओवरनाइट ट्रिप्स एंड
बट हैविंग सेड दैट हाँ राहुल उसी कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज द स्कोप चेंज्ड I kind of regret the fact कि अपना इतना रिच लैंडस्केप है महाराष्ट्र के पास एंड वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट क्वाइट लेट एज यू सेड ये सारा ट्रेक्स ओवरनाइट ट्रेक्स वगैरह के साथ में. बट हाउ पुअरली मेंटेन्ड आर दीज प्लेसेस. वहां पे तेरे को कन्वीनियंस के नाम पे कुछ नहीं रहेगा बट और पब्लिक के पास अभी पैसा है लेकिन वहां ठीक से जा नहीं सकता है विच मेक्स मोस्ट ऑफ इट अनएक्सप्लोर्ड. इन अ वे वो अच्छा भी है क्योंकि वहां भीड़ कम रहता है गर्दी कम रहता है. अदरवाइज अपन सब जगह को ऊटी और लोनावला जैसा बना देगा वो एक
yeah.
लोनावला इतना गंदा जगह है ना.
लोनावला का एक ही बेचारे का गलती है कि वो मुंबई से थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड में है. उसने कभी ना क्लेम किया
कि वो नहीं पड़ता है. तुम लोग को अगर लोनावला जाना है और तुम लोग को इफ यू वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट ना इससे अच्छा तुम लोग घर पे एसी को 18 करके रूम में बंद करके बैठो. तुम इट्स द सेम थिंग कुछ चेंज नहीं होता.
लोनावला इज द ओनली हिल स्टेशन इन इंडिया जो साल का 2 महीना ठंडा रहता है. मतलब वो बारिश आएगा जब मुंबई ठंडा रहता है लोनावला भी तभी ठंडा रहता है.
अरे और इतना पास है वो मतलब लोग कॉलेज से सब लोनावला जाता था मन में क्या तो
अपना कॉलेज से तो बहुत पास में था ना भाई उधर तो बंक करके लोनावला जाता था लोग.
या हम लोगों का कॉलेज नवी मुंबई का एकदम ऊपर लाइक नॉट एज डेजोलेट एज पनवेल बट देन वेरी क्लोज टू पनवेल. तो लोग लेक्चर बंक करके लोनावला खंडाला जाता था मतलब अमेजिंग.
नहीं कभी कभी बंक भी नहीं करना पड़ता था लेक्चर होता नहीं था तो
वो भी है. तो या आई थिंक
सिंस वी वर ऑन द टॉपिक ऑफ कॉलेज मेरे को एक और चीज पे मेरे को एक क्विक थॉट ऑन इट, तुम लोग का इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था क्या?
ब्रिलियंट. अच्छा, आई थिंक उस पे एक एपिसोड रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि कॉलेज का इंडस्ट्रियल विजिट वाज अ मिक्सचर ऑफ पिकनिक, ट्रिप एंड फार्स. तो तीनों होता था, वो
मोस्टली फार्स,
मोस्टली फार्स. वो बचपन में याद है क्या, हम लोग का स्कूल से वन डे का पिकनिक में लेके आते थे,
वज्रेश्वरी,
वज्रेश्वरी, कमला नेहरू पार्क. तो इंडस्ट्रियल विजिट बेसिकली तुम लोग दो वज्रेश्वरी बिटू असाइड एन ओवरनाइट स्टे, तो ऐसा करो
और लंबा ओवरनाइट स्टे. और इट वाज बेसिकली द एन एक्सक्यूज फॉर हमारा एक प्रोफेसर को पैसा बनाने का था ट्रैवल एजेंट बनके. तो इट
वाज एन जो कॉलेज का स्टूडेंट बॉडी कमीशन का जो हेड है वो.
हाँ, उसका नाम क्या था बे? Are we allowed to take names? Because I am pretty sure he won't be listening to this.
I think his name is Ajit Gangavne.
Ajit Gangavne. तो Ajit Gangavne को सिर्फ इतना एक एक्सक्यूज चाहिए था पैसा बनाने का. तो वो ऐसा रैंडम गोवा में कोई इंडस्ट्री विजिट करता है क्या तुम लोग?
तो हम लोग पहले बैंगलोर गए और पहले गोवा गए, गोवा से बैंगलोर एंड देन रिटर्न. तो गोवा वॉज अ डेस्टिनेशन. मतलब पेरेंट्स ने, मतलब आई मीन हाउ डिड पेरेंट्स अलाउ, मतलब उन्होंने कैसे कहा अच्छा गोवा जाएंगे इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाके.
अबे और गोवा में जस्ट बिकॉज मतलब इंडस्ट्रियल विजिट है करके प्रूव करने का था बोल के गोवा यूनिवर्सिटी लेके गया. अबे
नहीं नहीं, इट वाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी.
ओशनोग्राफी कुछ भी जो मिला उधर लेके गया, सुबह बिठाया, बाद में शाम को हम लोग इधर बीच में है, मतलब कलंगुट में शाम को है.
बिगर क्वेश्चन टू आस्क इज व्हाट डिड दैट हैव टू डू विद बायोटेक्नोलॉजी?
कुछ नहीं था, दैट वाज द ओनली थिंग रिमोटली एकेडमिक दे कुड फाइंड इन गोवा. और उधर प्रेशर कुकर सब दिखा रहा है, दे शोड अस अ लैब. बोला डीवाई पाटिल से ये तो डाउनग्रेड हो गया, मतलब अपना डीवाई पाटिल इज इन बेटर शेप. तो पब्लिक को रियलाइजेशन हुआ, मतलब क्या गोवा में, अरे अपन वी कुड बी वर्स ऑफ देन डीवाई पाटिल. वो गोवा में रियलाइज हुआ, आई थिंक.
राहुल ये एक सो सेकंड पार्ट क्या था पता है क्या, गोवा से बैंगलोर गए या अदर वे राउंड, और बैंगलोर में पब्लिक साड़ी वाड़ी शॉपिंग कर रहा था मन में क्या, और
कौन गया.
और फिर जिस दिन रात को ट्रेन था उस दिन सुबह को पब्लिक को याद है अरे इंडस्ट्री विजिट करने का करके. तो दोपहर को 3 बजे कोई तो एक कंपनी में लेके गया, और कंपनी का लॉबी में खड़ा रहकर कोई तो एक लेक्चर दिया हम लोग को
जो. और चार पांच टेस्ट ट्यूब दिखाया, बोला हो गया तुम्हारा इंडस्ट्री, रास्ते पे खड़ा रखा है रे किधर को, और गैरेज के बाजू में बोलता हो गया ये बैंगलोर हम लोग इसीलिए आया था.
और एक बस में बच्चा लोग बोला अरे नहीं हम लोग को लेट हो रहा है करके, चलो ट्रैफिक मिल जाए करके. वो भी नहीं गया.
And the Goa beat was even more excellent. मतलब गोवा में 7 दिन गोवा में था हम लोग, ठीक है.
7 दिन नहीं था एंडी, बहुत ज्यादा हो गया.
नहीं क्या पूरा ट्रिप 10-12 दिन का था बे. It was quite a big trip. याद है
सात दिन. I don't
पब्लिकल लीवर by the end of the trip.
अबे नहीं, it was quite a long trip. तू जाके चेक कर, 9-10 दिन का ट्रिप था. अपन बैंगलोर बहुत कम दिन था. 5-3 होगा.
नौ दस दिन includes 3 train journeys ना.
नहीं बे, गोवा जाने के लिए कितना टाइम लगता है, सुबह उठ के रात को चला गया. और वैसे ही एक फालतू सा बीच का ट्रिप था, जस्ट खाना सड़ गया था, वो मेरे को अच्छे से याद है. दे हैड अ पैकेज ऐसा कुछ तो राइस लेके आया था वे, और लोग पब्लिक झगड़ा कर रहा है उनमें क्या, इधर गोवा में स्टेशन में खड़ा रह के सड़ गया है बोल के दे आर पाइलिंग इट अप, और बोल रहे भिखारी को देगा. उनका एरोगेंस देख, बोलते भिखारी सड़ा हुआ खाना खाएगा, वो लोग को गारंटी देगा ऐसा.
अरे तो मेरे को गोवा से याद आया, मैं और राहुल जब हाई स्कूल में थे, हम लोग का हाई स्कूल का ट्रिप भी गोवा में,
12th standard में थे.
हाँ 11th and 12th. हम लोग का बेसिकली दैट वाज नॉट कैटेगराइज्ड एज इंडस्ट्रियल विजिट, इट वाज जस्ट कॉलेज स्कूल ट्रिप. तो तभी हम लोग गोवा में गए थे. इट वाज लॉट ऑफ फन. लेकिन कमिंग बैक टू ट्रैक, राहुल
डायगनली ऑपोजिट वापस कोई तो स्टूडेंट लोग था, ऊपर वो लोग गिटार, वो एक छोटा क्या होता है पोर्टेबल स्पीकर सब लेके बैठे हैं, वो लोग गाना बजा रहे हैं, सब जोर जोर से कर रहे हैं, और नीचे एक अंकल सोने को कोशिश कर रहे हैं, वो लोग उसको एक 1000 बार अपोलोजाइज किए रहेगा, अरे अंकल सॉरी चलता रहा, अरे अंकल सॉरी चलता ना, वो अंकल भी हा 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 कर रहे हैं, बट रात शाम का 8 बजे से लेके रात का 12:30 बजे तक वो लोग गिटार बजा रहे, गाना गा रहे हैं, अब अंकल को अगले दिन ऑफिस जाना है, बट वो सो नहीं पाया। मैं और मुझे को देख के वो अंकल का मुंह पे हंस रहा था, मालूम है क्या, एंड दिस वाज
पूरा रात हम लोग ट्रेन में हंस रहा था उसको देख के।
ओ मैन,
अरे राहुल तुम लोग कॉलेज से इंडस्ट्रियल विजिट गया क्या?
दत्ता में भिखारी कॉलेज था ना, इसलिए वो हुआ नहीं हम लोग का, बिकॉज एक तो पब्लिक को तो इंडस्ट्रियल विजिट बोलेगा तो फिर आधा लोग विल ऑप्ट आउट, एंड देन डिपेंडिंग ऑन द नंबर इट कम्स आउट ऑफ योर ऑन द डिपेंडिंग ऑन द नंबर दैट यू से, इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ 500 rupees, आई थिंक दैट विल एलिमिनेट अनदर 50% ऑफ द क्राउड।
बट वापी ओपी लेके जा सकता था मेरे
क्या? नहीं, लेके जाने के लिए तुम डोली में ही पार्टी कंप्यूटर का भी लेके जा सकता था, तो
आधा लोग का प्लेसमेंट आईटी में होने वाला है, तो वापी में आके क्या करेगा?
नहीं बट इंडस्ट्री वर्ड जस्टिफाई करने के लिए रे, जैसा अपन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में क्या क्या किया।
अरे तू सोच ना, मतलब डीवाई पाटिल ऐसा फार्स मेंटेन करता है, लेकिन दत्ता में इतना उतना प्रिटेंशियस नहीं है, बोला यार नहीं जाने का।
दत्ता में प्रिटेंस भी नहीं करता, उसके बाद मैं सुना कि सिंगापुर सब लेके गया इंडस्ट्रियल विजिट के लिए।
पेरेंट्स को क्या
बोला, नहीं लेके गए वो लोग,
कोई पूछा क्या कौन सा इंडस्ट्री पहले?
नहीं, पेरेंट्स को पहले से मालूम भी रहेगा वो लोग को,
टूरिज्म इंडस्ट्री
बट आई थिंक उसके बाद क्या हो गया, आई थिंक लॉट ऑफ स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज दैट वॉट एवर वी रिकाउंटेड वॉज मोस्टली ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग, एंड तभी उसके बाद सब लोग का नौकरी वोकरी लग गया, तो थोड़ा बजट बढ़ गया, इंस्टेड ऑफ ओवर नाइट ट्रिप्स एंड लिविंग इन सम शेडी होटल्स एंड लॉजेस, थोड़ा आई टी कंपनी का पैसा वैसा आना चालू हो गया, सो वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट डेस्टिनेशंस, बट अगेन वी वर लार्जली विद इन इंडिया, and that is where spots like northeast ladakh fir baad mein thoda down south sab aana chalu ho gaya, and I think that will take us to our next segment, I should say, and we would like to continue discussing more around the topic of travel. I don't know, who do you want to be the sponsor for this fake
Raj Tours and Travels?
No,
Raj Tours and Travels.
This was also co-sponsored by Ajit Gangavni.
Itna paisa banaya rahega wo log. But anyway,
वो आदमी डीवाई पाटिल से बच्चा लोग को अपने घर पे गणपति विसर्जन के लिए हेल्प करने के लिए लेके आता था। ओके, ब्रेक
जो लोग का जर्नल मिलता रहेगा उनको, बट सी यू आफ्टर द ब्रेक। या जय माता दी, लेट्स रॉक, सी यू आफ्टर द ब्रेक गाइस। So welcome back guys, this is our third and final segment for this podcast today, and we ended the previous segment on quite a hilarious note. Actually, we started off on what travel meant for us and how our priorities in life changed and how that translated into how we saw travel. And then there was this hilarious bit kicked in, which I think I lost it on the industrial visit part. So now we are going to be talking about how travel changed for us, specifically in which way and what that meant. But before I go into it, I would like our dear listeners to reach out to us on Twitter, on Gmail. On Twitter, our handle is called Seat Fourth at yes. Seat Fourth, and at the rate, or at Seat Fourth, and our email ID is the fourth seat podcast at gmail.com. So if you have any thoughts, any memories, any feedback, or just if you want to spam us with penis enlargement emails, please reach out to us and share that content. We would love to hear from you.
Prince from Nigeria. Willing to give us money.
Yeah, and Microsoft and Coca-Cola giving us a lottery, winning lottery ticket. So yeah, please reach out to us. So anyways, as I was talking about how travel for us changed, I think one of the things that changed travel a lot for us was the fact that we started earning after graduation or engineering. The advent of the internet, which killed the middleman, so to speak, because we suddenly became more and more independent in terms of deciding the destinations, the accessibility for it, and making it more predictable and less of a scare. Of course, there was this point of uncertainty in every trip that we took, but I guess the fact that it became more predictable and stable helped our cause. So I just would like to invite both Mayuk and Adi's thoughts on how things changed for us with the internet, and how disposable income basically brought about that change, and what changed specifically. So Adi, what's your thought around that?
Yeah, in between the disposable income part and our family travels, there was an intermediate phase for me, which was free travel during my PhD. So, where the trips would usually be funded, and the advent of internet meant that you could go to a lot of places which were hitherto not, say, well documented in travel magazines, or where people generally do not visit. So I think accessibility and Google Maps, especially the confidence of being able to navigate in every damn town, whether you know the language or not, whether you know the local terrain or not, I think that made a huge difference. And the bookings were obviously a lot more made a lot more easier by just being able to hop onto the website and then book, say, a hostel, a backpackers facility of some kind. I think over a period of time started becoming more open to these things also.
Yeah, and I think there was this sense of exposure that we got from media as well, which helped us gain more insight into where is it that we can go and check out. But Mayuk, your thoughts on that?
Yeah, so a similar experience like Adi. So I have not really done international travel per se. I mean, while I was traveling in the US, I was basically living in the US. So I wouldn't necessarily term it as international. I was a domestic traveler within here. So the good thing was we were getting paid for doing research. So I was not saving a lot of money, because I was spending most of what I was saving per month for travel. So I remember, a friend of mine, she is from Florida, and she told me once that I have actually traveled more in the Southeast US and the East Coast than her. And she being a person who was born and raised here. So I traveled a lot, but unfortunately it was at that time, for some reason, I was mostly traveling in the East Coast of the US, Southeast, some remote places, great hiking tours. Like I was hiking, not tours as such, arranged tours, but I was doing them myself. Some foray into the West Coast for conferences, but I spent a lot of time, of free time, traveling in the US. I haven't really traveled international per se. So, like Adi pointed out, it really is an important point for me. The first time I used a smartphone was in 2010 in the US. And for the first time, I had this app, Google app. So my first vacation that I took was, I was being very stereotype traveler. I took a flight from Atlanta to New York. I was exploring New York City with one of my friends, and Google Maps. So I was walking in the Manhattan district on my own using Google Maps. It was fantastic. It was amazing. Mm-hmm. So that is how travel changed. Like, the family part was not here. I enjoyed the fact that I was very independent at that time. So that is how it sort of continues to be right now. But I'm right now, because I'm no more a graduate student, I'm spending a little bit more money going to a little bit more expensive destinations in the country, which are much more remote.
But I think that it's very important that you highlighted that being independent drove a lot of choices, where, I mean, helped you become more explorative in that sense. Because if especially if you look at the younger folk who started earning money thanks to this IT ka boom. And in general, I think public has paisa thoda zyada itna, even the average Indian retiree is, I would say, reasonably well off. And a lot of people like you, or us, I should say, the three of us, jo log bahar rehte hain, wo log agar wapas India aate hain, so we have this tendency to take on some more international locations. To uske chalte, I think if you really want international travel, I would say come to Europe. Europe is a fantastic continent in that sense, and bahut sara jagah hai. And for the average desi, I would say South Asia and Southeast Asia suddenly became more accessible, because I think awareness bahut badh gaya tha. In fact, ek maine ek interesting anecdote suna hai ki public apne idhar travel ke liye itna taras gaya tha. कि आफ्टर द सुनामी बिकॉज द ट्रैवल इंडस्ट्री टुक अ बीटिंग, ये तुम्हारा साउथ ईस्ट एशिया का जो जगह था वहां पे द फर्स्ट पीपल टू विजिट दैट प्लेस वाज इंडियंस बिकॉज दे वर गेटिंग फैंटास्टिक डील्स.
Yeah, so I mean, right now, people from college, instead of going to Goa, they're going to Thailand, right? For obvious reasons. But then again, I mean, it is a new Goa, I feel. Or what you mentioned about the tsunami affected region, right now it is happening to Greece, in the sense unka economy itna kharab hai. Travel is dirt cheap in Greece. So I have a lot of folks who are traveling to Greece because it is extremely, extremely affordable. And that brings us back to, you know, a lot of Indians who are earning in dollars and euros. So if you are visiting home and if you do a slight detour to, let's say, even Sri Lanka or Cambodia, your euro and dollar actually goes a long way for one night or two night stays over there.
And even if you're earning in rupees, the fact that Indians are stingy travelers doesn't help the economy in any way. The fact that hum log hamara khana pack karke leke jata hai and we don't want to spend that extra 50 bucks during our travel doesn't help the travel industry in general. I understand ki pantry ka khana kharab hai, but even khana achha bhi hai, to we prefer to pack our own food.
See, so that is a big part of my travel, where main jahan bhi, like within US, in India, jahan bhi jata hun, I try the local food. But that did not come naturally to our parents' generation. So
we are in that sense a bit conservative. So there's two things which I would like to talk about. I mean, well, there's one thing that I would like to talk about here, before which I would like to thank our sponsors for our fake break, which is MTR Foods, because MTR has been responsible for making a lot of travel possible, especially for the conservative folk. So if you're a vegetarian and if you want to visit Poland or France, you will realize its importance very soon, and if you haven't traveled especially. But the in terms of influences, I would just like to say ki jo tu bol rahe Mayuk food try out karne ke liye, wo sab uske liye ek mindset chahiye rehta hai. And a big influencing factor or a catalyst in that sense is social media. Public Instagram mein photo dal ke काफी सारा लोग उसको बकेट लिस्ट, वांडरलस्ट ऐसे सब बोल के दे स्टार्ट परस्यूइंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस. एंड आई थिंक इवन प्रायोरिटीज हैव चेंज, बिकॉज़ पब्लिक अभी ईएमआई भरने के जगह पे वेकेशन के लिए सेव अप करना चालू कर दिया है.
आई थिंक इट्स अ गुड चेंज, राइट? I think we our generation is much more open minded, and of course the disposable income is there, but I think there is a sense of, I would say, something that is possible. For example, our parents, even if our parents had that kind of savings, if our parents had that kind of disposable income, which I suppose to a certain extent they had, unke liye nahi, hum log abhi, we don't want to go to Laos. It was kind of very strange for them. आई मीन एटलीस्ट पीपल ऑफ आर बैकग्राउंड
हम लोग नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी पे आ जाता है ना उनके लिए वो तभी भी लग्जरी था कोई जगह जाओ वेर तुम्हारा रिलेटिव्स नहीं है वो बहुत हार्ड है मेरे लिए मतलब
I think after
especially retirees form a very big chunk of A, the travelers in general and B, specifically to agar
nee, wo bahut recent things,
Kesari tours, ye log ko to agar dekhega, tera tu itna PF mein aur bonus mein jo paisa banaya, even agar tere ko, if you want to gift a vacation to your parents, Kesari Vesari mein to ek 10 din ke liye bheja hai, wo log pura Europe cover kar leta hai re.
And it is a little travel tip to all those desis out there. तुम लोग किधर भी जाएगा तुमको मिल जाएगा 100 देसी लोग और मतलब वो इतना मुश्किल नहीं है मतलब तुमको किधर भी you will not feel out of place. खाना होने दो just language too. मैं इटली का एक बॉर्डर टाउन में थ्रिएस्ट में रुका था वे एंड इट इज द लास्ट प्लेस आई वुड हैव एक्सपेक्टेड गुजराती टू बी हर्ट लेकिन उधर भी मिला मेरे को मतलब उधर 10 लोग ऐसा बच्चे को प्राइम में लेके जा रहा है जिसका मतलब है कि वो काफी टाइम से है उधर और वो तेरे को फुल फ्लो में उधर गुजराती सुनाई देता है वहां पे
ऐसा तो तू स्विट्जरलैंड में सब तू जाएगा ना इट्स एम्बैरेसिंग वहां पे लिटरली सुविनियर शॉप्स में और ऐसा वॉच और परफ्यूम का दुकान में हिंदी में लिखा रहता है कृपया हाथ मत लगाइए करके सर से मेरा शर्म से सर नीचे झुक गया था क्या बोलेगा तू अभी बट दैट्स हाउ इट इज बट स्पीकिंग ऑफ इज मेरे को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करना था कि वॉट वुड यू क्वालिफाई एज the best experiences that you have and obviously to compliment that the worst or the most overrated destinations that you have had and if I could kind of take a lead here obviously India as a travel destination is phenomenal and the more I think about it jitna apna desh mein variety hai utna duniya mein kahin pe bhi nahi hai I would say and I can be very confident in saying that
True.
And even on a shoestring budget you can actually cover a lot So in terms of my best experiences, besides the fact that there is traveling involved, I think company and what you do there also is important, which I will not go into. But my best experiences, hands down, have been in Hampi and Gokarna, both of them which are in Karnataka. But guys, if you have not visited that place, please do. And appreciate the culture that we have. And वो वहाँ का जो चीज़ है वो इतना पुराना और इतना phenomenal है. I think you will really get overwhelmed when you see that. Closer home to Mumbai, there was this Sahyadri's or Western Ghats and specifically there were three treks that I remember of which I think मैं Mayu के साथ दो trek पे गया था. एक Malchej Ghat, एक Harishchandra Gad and Rajmachi. I think very small and it, as Mayu mentioned earlier in the podcast, काफी template था इसका. Rugged terrain, poor accessibility and on top you had Shivaji Maharaj ka fort. Brilliant experience overall. Northeast, again a place that I would recommend people to explore. One of the most pristine and beautiful parts of the country. Gangtok in specific, particularly is something that I loved. I would love to go to Shillong and all those places. For food, do a road trip in Rajasthan and Punjab ka highways guys wahan ka khana khane ke baad tum log duniya ka kahin ka bhi khana khaoge nahi and culturally and from a more my roots point of view I would say south mein deep south mein especially the areas around Pollachi were the most beautiful farmlands that I've seen and Tanjavur for the cultural great richness that it had in terms of both the Brihadishwara temple and the sadis and everything else that came from there. So these were my best experiences. So sorry I went on for this long time, but Adi and Mayuk, what were your best and worst experiences, if I can say it?
I think you actually pretty much covered a lot of good travel experiences that we had together. Right, not only in terms of trekking, but individually with Gokarna and Hampi, they are awesome places. But I would take just for the sake of giving an example, I would give an example of me going with my family and family friends to Amritsar and Jammu. I mean, for some reason, I mean, I really liked Amritsar. It was, I don't know, I mean, I felt a lot of peace in that city. I mean, not because it is a quiet and quaint town. No, there is a hustle bustle involved, but there was something, I mean, really, really calming in the city of Amritsar, especially the Golden Temple. I have been on there only once, and I would like to go there again the next time I'm visiting India. Mm. And our family friends and my parents, they wanted to go to Jammu to do the hike to the temple. What's the name of the temple there? I forgot.
Vishnu Devi.
Jai Mata Di, let's rock. Yes, yes, yes.
Vaishno Devi.
Vaishno Devi. So, amazing trek. Great facilities. I mean, I'm talking about 2004, but now it can only get better. So, amazing views, great facilities. Bahut maza aaya wo trip mein. And that was best in India for, I mean, one of the best experiences in India for me. Outside India, in the US, I really like driving. I mean, it's my favorite thing for relaxation and decompressing. I like driving. So I would rate my cross-country move on the road from the East Coast to the West Coast as one of, as probably the best travel experience that I had. I was with my wife and our dog, Hildy. It was amazing. One of the things that I like about the American subcontinent is, again, the geographical diversity. Mm. So every day is a new terrain. And this country has a lot of well-maintained state parks and national parks. Altogether, a different episode. So, you know, if anyone is planning to visit me in the U.S., for a significant amount of time, we would definitely do a cross-country or a segment of the cross-country road trip. It is amazing. So,
and US is bahut bada country, so I can completely understand when you said that. The more you read about it, when you said ki tera international travel ke naam pe tu US ke bahar gaya nahi hai, it's not just you. I think with every American, काफी understandable है. बहुत बड़ा country है. And India exactly. भी छोटा country नहीं. India is also a huge country. It's just that yeah. explore करने जाएगा तू, तो पागल हो जाएगा तू.
Exactly. And then, you know, you can bring your own context into it. For example, I am a bit of a history buff. I am a recent newbie history buff in terms of American history. So a segment of American history that I really like is frontier life, where people were migrating from east to west. And when you do a road trip from east to west, you are pretty much taking their route. And a lot of that human migration history comes into picture over there, which is amazing. I mean, the geographical diversity is absolutely stunning, the views that you get. So, I mean, before I really stretch it, Addy, would you like to add your, you talked about your favorite places, right? Could you expand upon things that you absolutely did not like?
I agree with Rahul that Hampi and the places around Hampi is a phenomenal place. Okay, so if you just are open with your minds to soak in a bit of history, I think Hampi is a place to be, and I think every Indian should visit it. Like,
yeah,
it's phenomenal. The relics there just remind you about how glorious the entire place would have been all those years back. And as you guys both mentioned, I think the treks around Maharashtra are superb. And one thing that always would get me back to those treks is the food that you get in those villages at the end of the
trek. Oh, man. I still remember the taste of that food.
It is superb food. And the love with it, which most of them serve it, is also really good. Like,
and these are mind you, regular village folk. These are not people who have Airbnbs or something like that.
Yeah.
Village folk who would invite you into their homes and let you stay for peanuts. But the quality of food.
They don't charge a premium for anything.
Absolutely nothing. और एक रैंडम एरेगेंट सिटी स्लिकर बॉम्बे से आया है एक दिन के लिए, उसको भी ऐसा फील कभी नहीं होएगा कि ऐसा फालतू जगह में रुका है करके. मतलब दोज आर एक्सपीरियंसेस विच आर अनमैच्ड. वो तू बहुत पैसा दे के एयरबीएनबी में भी नहीं रुक सकता वैसा. एंड टू गो अहेड, फिर मेरे को ये, देर आर अदर एक्सपीरियंसेस अगेन. आई एम काइंड ऑफ अ हिस्ट्री बफ व्हेन इट कम्स टू इंडियन हिस्ट्री, तो आई लाइक गोइंग टू अ लॉट ऑफ दीज temple towns, not for the religion per se, but the architectural marvels, like Tanjore, Srirangam in south,
फिर विच इज अ टाउन नियर ट्रिची फॉर ऑल दोज हु मे नॉट बी अवेयर एंड देन इवन तिरुपति फॉर दैट मैटर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इट इज एक्सेप्शनली क्राउडेड इट्स अगेन एन आर्किटेक्चरल मार्वल मतलब ये सब वो हम्पी के टाइम का स्ट्रक्चर्स है तिरुपति का भी टाइम का
हिल के ऊपर बना है इन द मिडल
फाइटिंग
सो मच अनसर्टेनिटी एंड वाइल्ड लाइफ माइंड यू
सो रिलीजियन अपार्ट मतलब ईच रिलीजियस साइट इन द साउथ ऑफ इंडिया एंड इवन मोस्ट ऑफ इट इन द नॉर्थ या गुजरात वगैरह में भी हैज सो मच हिस्ट्री स्टीप्ड इनटू इट तो जस्ट कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन मतलब यू बी रेडी प्रिपेयर्ड टू बी अमेज्ड मतलब बहुत सारा केसेस में वी गो देयर विद अ रिजिड माइंड फिर हम लोगों को अपना एक टाइप का फूड खाना होता है सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम सो आई थिंक दैट आई एक्सपीरियंस्ड इवन इन यूरोप फॉर एग्जाम्पल I am a vegetarian, but even then, if you travel around with an open mind, like as I said, Trieste is like this border town between Slovenia and Italy. Yeah. But even there, if you travel with an open mind, vegetarian khana mil jayega. But don't be paranoid about ki Indian food nahi milega. Matlab, theek hai, beyond a point, that also forms part of the experience. So I said, don't get caught up. I think that would be something I would say. And when it comes to bad travel experiences, some of my worst were in bigger cities like Los Angeles, downtown. Sometimes it comes with a risk. So when you're traveling on a shoestring budget, aisa ek faltu Airbnb mein ruka tha hum log. And it was in downtown LA. One of the shadiest and scariest experiences of my life wahan pe tha.
Yeah, mera, I mean, worst travel destinations for me, any big city in the US. I mean, first time I went to New York City, I liked it. After that, I have been there several times. I absolutely hate that place. So I know, I mean, there is a lot of culture, subculture and sub-subculture associated with big cities in the US, but I don't get it. Mujhe bilkul pasand nahi hai.
बट मेरा बिग सिटीज के साथ में आई हैव वन सजेशन टू मेक बिग सिटीज कभी तुम ऐसा दो दिन में घूम के यू डोंट एक्सपेक्ट टू लर्न मोर अबाउट द सिटी
नहीं बट
आई थिंक इफ यू विजिट हो जाता है वो फिर
चेकलिस्ट विजिट हो जाता है बट से इफ यू आर अ टूरिस्ट टू बॉम्बे वर्सेस समवन लाइक अस हम लोगों का रिकमेंडेशन ऑफ द सिटी वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट टू वॉट ट्रिप एडवाइजर वुड से
राइट
वही इवेंचुअली हो जाता है बड़े सिटीज में बट सम ऑफ माय गुड बिग सिटी एक्सपीरियंसेस हैव बीन इन रोम एंड लंदन रोम इज फिनोमिनल वैसे मतलब
सो दैट्स अ डिफरेंस राइट सो अमेरिकन बिग सिटीज आर वेरी डिफरेंट कंपेयर्ड टू यूरोपियन बिग सिटीज यूरोपियन बिग सिटीज में तेरे को बहुत ही हिस्ट्री बहुत सारा हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर मिलेगा अमेरिकन बिग सिटीज में तेरे को रीसेंट हिस्ट्री और आर्किटेक्चर थोड़ा मिलेगा बट मोस्ट ऑफ इट इज इन माई ओपिनियन सीप्ड इनटू पॉपुलर कल्चर which to me, I don't enjoy it. For example, I am a big no for any form of graffiti art. I know they are considered mainstream artists, but mujhe like graffiti bilkul pasand nahi hai. So that's one reason I'm not very fond of American big cities. Pura ghumne ke liye, kaam ke liye obviously main jaunga. I live in a big city. Weekend mein time pass mera big cities mein hi hota hai. But if I'm taking a break, I would at least in the US, I would go to a national park or a hiking trail somewhere remote.
Escape from that hustle bustle.
But then again, it's very subjective also. Like
It is.
I enjoyed London because mereko British history in general because of sport, na football or cricket or tennis. Tino ka it is the home of all the sport. So when I went to London, I was really excited and I went around to the fabled centers of all these sports. So that was fun. So it's basically about what you look forward to in any city and travel your trips around that, folks. Matlab, don't go by what TripAdvisor says and so on.
इसमें एक और इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया का जो है एंड वी आर नॉट काइंड ऑफ ड्रॉइंग टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट टुडे आई जस्ट वुड लाइक टू मेंशन दैट द रीजन वी एन्यूमरेटेड मोस्टली इंडियन डेस्टिनेशंस इन टर्म्स ऑफ आवर बेस्ट एक्सपीरियंसेस इज दैट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव अ वॉइस एंड आई थिंक वी एट द एंड ऑफ द डे आर द एम्बेसडर्स इन सम सेंस फॉर आवर ओन कंट्रीज डेस्टिनेशन सो If you go abroad and if they say what is it that you would like to recommend to us in India, I think you should ask them what is it that you would like to see because there is absolutely so much. because when it comes to internet as a medium, it's still dominated by Western destinations, and you know, the Instagram generation is still aping the West in that sense. So speak up for your desi destinations, especially Hampi and all these places, because they need that and they deserve it more than anything else. In terms of being overrated, I just would like to say, you know, since I am in Europe, and I would like to warn some of our listeners that there are some destinations that I would definitely recommend that you avoid, especially climbing up the Eiffel Tower, looking at the Mona Lisa painting in the Louvre Museum, Amsterdam ka Red Light District, fir ye Leaning Tower of Pisa, Venice. Hai acha jagah, but they are overrun by tourists right now, so I think you should explore a bit more.
I would say if you want to do all those things, you can come to Las Vegas. Sab hai fake
Las Vegas aur fake, but wo tu asli bhi itna bakwas hai na yahan pe, pakke overrun ho gaye re. And Bangladesh mein bhi kafi kuch hai dekhne ke liye, isliye aur
apna khud ka cities mein bhi अपना खुद का सिटीज में भी स्पॉट्स ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा प्रमोट करो. फॉर एग्जांपल कान्हेरी केव्स बॉम्बे में इज ओल्डर देन मेनी ऑफ दीज हिस्टोरिकल साइट्स इन यूरोप, लेकिन नो वन गिव्स अ डैम अबाउट इट. ₹5 का टिकट में वो जगह में जा सकते हैं तुम लोग. फिर संजय गांधी नेशनल पार्क पे इतना ट्रेल्स है, मतलब जस्ट प्रमोट अ लिटिल बिट ऑफ इट.
यस, एंड बीइंग फ्रॉम मुंबई आई थिंक वी ओ इट टू द सिटी दैट वी डू प्रमोट ऑल दिस, सो एनकरेज दैट. And that's it from our side, guys. So thank you for listening to the Fourth Seat podcast, and stay tuned. And as I said, please reach out to us by email and or on Twitter. So long for today, and thanks a lot Adi and Mohik for today's discussion.
Welcome. And do write into us about your favorite destinations.
Yes, please.
All right. Thank you, guys. Thank you.
Thank you. Bye.
Thank you.
Thank you.